ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 28वां अध्याय। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। चितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम् आदीप्य चानुमरणे विलपन्ति मनोदधे। अनुवाद। तब उसने लकड़ी से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। उसके बाद वह अत्यधिक विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में जलने के लिए स्वयं तैयार हो गई। तात्पर्य, यह अत्यंत प्राचीन वैदिक प्रथा है कि आज्ञाकारिणी पत्नी अपने पति के साथ ही मर जाती है। यह सहमरण कहलाता है। यह प्रथा भारत में अंग्रेजों के आगमन काल तक प्रचलित था, किंतु उस समय तक यदि कोई स्त्री पति के साथ नहीं मरना चाहती थी तो कभी कभी उसके संबंधी उसे बलपूर्वक ऐसा करने के लिए बाध्य कर देते थे। पहले ऐसा न था। पत्नी स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश करती थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे अमानुषिक समझकर बंद कर दिया, किंतु हम भारत के प्राचीन इतिहास में पाते हैं कि जब महाराज पांडु मरे तो उनकी दो पत्नियां माद्री तथा कुंती जीवित थीं। प्रश्न ये था कि वे दोनों मरे या एक। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद यह तय हुआ कि केवल एक ही मरे, माद्री अपने पति के साथ मरे और कुंती पांचों पांडवों के पालन के लिए जीवित रहे। हमने 1936 में देखा है कि एक पतिपरायण पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई थी। इससे सूचित होता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार गुरु भक्त शिष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप देने में असफल रहता है तो वह गुरु के साथ मर जावे। जिस प्रकार भगवान इसी पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, उसी तरह उनका प्रतिनिधि गुरु भी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता है। यह तो शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु के संदेश को ग्रहण करने, उसे कार्य रूप में परिणत करें। अन्यथा अच्छा हो कि शिष्य भी गुरु के साथ मर जाए। दूसरे शब्दों में, गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने तथा अपने सारे निजी विचारों को त्यागने के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहां पर प्रसंग ये चल रहा है कि राजा मलयध्वज, इनकी मृत्यु हो गई वन में। मलयध्वज राजा भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। वानप्रस्थ आश्रम जब उन्होंने स्वीकार किया तो अपनी पत्नी वैदर्भी के साथ में वो जंगल में चले गए, जैसे कि पुराने काल में प्रथा थी, और वहां जाकर तपस्या करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। और अंततः जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी रानी वैदर्भी ने एक चिता बनाया और अपने पति का शरीर उस पर रख के अग्नि लगा दिया और वे खुद उस अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गई। इसे सहमरण या सती कहते हैं। पुराने काल में वर्णाश्रम धर्म का पालन इतने अच्छी तरह से होता था, धर्म परायण होने के नाते दोनों स्त्री और पुरुष में ऐसी अजीब और अद्भुत शक्ति आ जाती थी, आज के दृष्टिकोण से अजीब या अद्भुत, लेकिन उस काल में ये तो साधारण था, एक प्रथा थी जो कि सभी करते थे। जैसे आज के हिसाब से देखा जाए तो कौन ऐसे नेता है या राजा है जो बूढ़े होने पर सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करेगा? है कोई राजा ऐसे आज जो करने के लिए तैयार होगा? आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक अपने कुर्सी को छोड़ते नहीं है, फिर भी चुनाव लड़ेंगे। खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, दांत गिर गए हैं, बाल गिर गए हैं, इतनी सारी बीमारियां हैं, लेकिन फिर चुनाव में खड़ा होते हैं। फिर 80 साल की उम्र में भी, 90 साल की उम्र में भी मंत्री होने की इच्छा रखते हैं। तो जब नेता ऐसे हैं और सरल से सरल तपस्या करने के लिए उनमें क्षमता नहीं है, तो फिर स्त्रियों के लिए कैसे संभव है कि वो ऐसे सती करें? कलयुग में यह संभव नहीं है, खास करके आजकल के जमाने में। प्रभुपाद जी एक दूसरे तात्पर्य में बताते हैं कि यह संभव नहीं है। उस जमाने में वो शक्ति स्त्रियों में भी थी कि जब अग्नि में प्रवेश करते थे तो पतिव्रता स्त्री को वो अग्नि का की जो वेदना है वो नहीं लगती थी, और इस प्रकार से वो जब अपना प्राण त्यागती थी पति के साथ में, तो बताया जाता है कि पतिव्रता स्त्री को अपने पति के साथ ही अगले जन्म में कोई स्थान मिलता था, फिर से पति पत्नी शायद बन जाते थे, लेकिन केवल उन पति पत्नी को जहां पे पत्नी बड़ी पतिव्रता हुआ करती थी। तो इस प्रकार से ये प्राचीन जो प्रथा है आजकल कानून के खिलाफ है, ये गुनाह है। ब्रिटिश सरकार के टाइम से जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसे गैर कानूनी किया गया है। और ये समस्या कब शुरू हुई? जब स्त्रियों को जबरदस्ती अग्नि में धकेला जाता था, खास करके आजकल भी राजस्थान में ऐसे बहुत होता है, और कई बार अखबारों में, मैगजीन में वगैरह हम पढ़ने में आता है ये सब, कि किसी स्त्री को जबरदस्ती वहां अग्नि में डाला गया वगैरह। तो आजकल ये न केवल कानून के खिलाफ है और न ही ये आजकल के लोगों के लिए ये संभव है, न वो शारीरिक या मानसिक शक्ति लोगों में होती है और न वो पतिव्रता की भावना आजकल उस मात्रा में है। लेकिन फिर भी मूल बात क्या है जो हम सीख सकते हैं, मूल बात हम इससे क्या जान सकते हैं कि पति पत्नी के संबंध में पति को और पत्नी को कैसे रहना चाहिए? ये हमारे शास्त्र में अच्छी तरह से बताया हुआ है। वास्तव में पत्नी का कर्तव्य होता है कि वह पति के साथ में रहे, पति की सेवा करे। ये एक ऐसे कानून है, एक नियम है शास्त्रों का, जिसको कभी भी ठुकराया नहीं जा सकता। जो पत्नी अपने पति से स्वतंत्र होकर जीना चाहती है या पति की सेवा नहीं करना चाहती है, तो उसे कभी भी संसार में सुख नहीं हो सकता है। जब धर्म का पालन नहीं होगा तो फिर शांति नहीं होगी, और धर्म का पालन जब नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी, और जब तक भक्ति नहीं होगी आनंद कैसे मिलेगा? ये संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? इसलिए पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति के साथ में रहे। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, पति के आधा अंग। पति कोई भी धार्मिक कार्य अपने पत्नी के बगैर नहीं कर सकता। पति को भी चाहिए कि पूरी तरह से अपने पत्नी का संरक्षण करें, पत्नी को संतुष्ट रखें, पत्नी की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करें। और साथ साथ पत्नी का कर्तव्य होता है अपने हृदय से पति की सेवा करें, और अगर पति भक्त हो तो उसकी भक्ति में सहायता करें। हम देखते हैं कि गांधारी हालांकि इतने ऊंचे कुल की थी, बड़ी सुंदर थी और नाना प्रकार के अच्छे गुण उनके अंदर थे, लेकिन जब गांधारी को पता चला कि मेरा विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होने वाला है जो कि अंधा है, तो खुद उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और उस दिन से कभी भी वो पट्टी खोली नहीं, क्योंकि अपने पति अंधे थे। अभी आजकल तो ये इसकी अपेक्षा तो हम नहीं कर सकते, संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में लोग ऐसे हुआ करते थे, ये शक्ति लोगों में थी उस समय। और इतना ही नहीं, गांधारी ने देखिए क्या क्या त्याग दिया। गांधारी को सारे ब्रह्मांड के पतिव्रता स्त्रियों में से एक माना जाता है, जैसे कि सीता देवी हैं, जैसे द्रौपदी हैं, जैसे मंदोदरी हैं। देखिए हम ये भी जानते हैं शास्त्रों से कि कई पतिव्रता स्त्री जो हैं, जो विख्यात है इतिहास में पतिव्रता होने के लिए, उनके पति शायद प्रामाणिक नहीं थे, जैसे कि रावण। रावण कोई प्रामाणिक पति तो नहीं थे, केवल एक प्रामाणिक असुर थे, मतलब जो असुर को करना चाहिए, जो दुष्ट लोगों को करना चाहिए। अगर किसी को सीखना है कि दुष्ट कैसे बनना है तो रावण के पद चिन्हों में चल सकता था, लेकिन किसी भी अच्छे कार्य की दृष्टि से वो प्रामाणिक नहीं थे। लेकिन फिर भी रावण के पत्नी मंदोदरी को प्रामाणिक पत्नी माना गया है। पतिव्रता स्त्रियों की जब बात होती है तो मंदोदरी की बात तो अवश्य आती है, कैसे संभव है। दूसरी ओर धृतराष्ट्र, वो भी प्रामाणिक नहीं थे, हालांकि हृदय से अच्छे थे, लेकिन पुत्र के प्रति आसक्ति होने के कारण उनका मन भी दुष्ट हो गया। यह भी एक कमजोरी है, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता। धृतराष्ट्र अपने आप को रोक नहीं पाए, हालांकि कई बार विदुर ने, भीष्म ने, द्रोण ने, स्वयं भगवान कृष्ण ने उनको समझाया, लेकिन जानते हुए भी, समझते हुए भी वो उन आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाए, उनको स्वीकार नहीं कर पाए, भौतिक आसक्ति की वजह से। और वास्तव में देखा जाए तो केवल धृतराष्ट्र की वजह से ये सब कुछ, ये सारा नुकसान हुआ। अगर धृतराष्ट्र अटल रहते और अपने पुत्र को कह देते कड़क होकर कि नहीं, हमें भाग करना ही है, पांडवों को उनका हिस्सा देना ही देना है, तो दुर्योधन शायद कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि आखिर धृतराष्ट्र राजा थे। और अगर धृतराष्ट्र ऐसे कड़क रह जाते तो भीष्म देव को भी धृतराष्ट्र की बाजू लेकर ही लड़ाई करनी होती, और दुर्योधन कभी धृतराष्ट्र के खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि वो जानते कि भीष्म, द्रोण इत्यादि राजा के पक्ष में रहते, क्योंकि भीष्म ने व्रत लिया था कि मैं हस्तिनापुर के राजगद्दी की रक्षा करूंगा, और धृतराष्ट्र राजगद्दी पे थे। और जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का साथ लिया तो भीष्मदेव को भी जाना पड़ा, लेकिन अगर धृतराष्ट्र दृढ़ रहते कि मैं दुर्योधन को गलत मार्ग में जाने के लिए नहीं दूंगा, इस वंश का नुकसान करने नहीं दूंगा, तो भीष्म, द्रोण इत्यादि सब धृतराष्ट्र के साथ में आ जाते और फिर दुर्योधन अकेले पड़ जाते केवल कर्ण और शकुनी के साथ में। तो कभी भी दुर्योधन ये साहस नहीं करते कि मैं अपने पिता के खिलाफ जाऊं, क्योंकि भीष्मदेव जो उनके पक्ष में है, भीष्म का सामना भला कौन कर सकता था, कर्ण भी नहीं कर सकता था। तो मूल जो गलती थी वो धृतराष्ट्र की थी, तो धृतराष्ट्र की वजह से इतना सब हुआ। तो किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो धृतराष्ट्र, इसकी उनके अंदर बहुत गलतियां थी, प्रामाणिक पति नहीं थे। कई बार गांधारी ने भी समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माने। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र भी एक प्रामाणिक पति नहीं थे, फिर भी उनकी पत्नी गांधारी एक श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री मानी जाती है। तो गांधारी को कितना कष्ट सहन करना पड़ा, अपने तरुणी अवस्था में अपनी दृष्टि बंद कर ली, आंख बंद कर ली, जीवन भर के लिए एक अंधा पति स्वीकार किया। पिता ने कहा कि यह तुम्हारा पति है, स्वीकार कर दिया। घर में हल्ला नहीं किया कि अरे मेरे शादी ऐसे व्यक्ति से की जा रही है जो कि अंधा है, मैं तो जवान हूं, मेरे जीवन का क्या होगा। नहीं, जो आदेश मिला तुरंत स्वीकार कर दिया। और जीवन भर उस व्रत को का पालन किया गांधारी ने, और इसके बाद भी आगे चलकर धृतराष्ट्र, दुर्योधन इत्यादि, दुर्योधन के हरकतों को देखकर गांधारी को कितना दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। कई बार दुर्योधन को डांटा भी, यहां तक एक बार गांधारी ने दुर्योधन से इतने कठोर शब्द का प्रयोग किया कि हे दुर्योधन, तुमने क्या व्रत लिया है सारे वंश का नाश करने के लिए? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम इतने मूर्ख हो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता जो बोल रहे हैं या हम सब बुजुर्ग जो बोल रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए, हमारे वंश के भलाई के लिए है। मुझे ऐसे लगता है कि तुम तब सीखोगे जब भीमसेन उसकी गदा से तुम्हारे शरीर को चूर चूर कर देगा रणभूमि पर, तभी तुम समझ पाओगे। तो कौन मां है जो अपने पुत्र के साथ ऐसे कठोर शब्द इस्तेमाल कर सकती है? लेकिन फिर भी गांधारी ने कहा, इससे हम समझ सकते हैं कि गांधारी को कितना दुख होता होगा। और उसके बाद गांधारी ने अपने आंखों के सामने अपने 100 पुत्रों की हत्या देखी। तो हालांकि वो जानते थे कि पुत्र गलत रास्ते पे जा रहे हैं, फिर भी मां का हृदय था। तो गांधारी ने दुखी होकर, क्रोधित होकर कृष्ण को भी शाप दिया कि तुम्हारे वंश की भी हत्या ऐसी होगी जिस प्रकार से यहां हमारे एक ही वंश में एक दूसरे ने सबकी हत्या कर दी है, सारे वंश को खत्म कर डाला है, तुम्हारे वंश के साथ भी ऐसे होगा। अब कृष्ण तो भगवान है, अभी कौन उनको शाप दे सकता है? और अगर कोई शाप दे भी तो क्या शाप का प्रतिकार करने की शक्ति या सामर्थ्य भगवान में नहीं है? अवश्य वह तुरंत उस शाप को निष्फल बना सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे नहीं किया। भगवान कृष्ण ने गांधारी के शाप को स्वीकार किया। इसका कारण यह है, एक पहला कारण कि श्री कृष्ण एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, और मनुष्य मतलब वो गांधारी के पुत्र के समान थे, इसलिए मां का आदेश, मां का शाप तो स्वीकार करना ही चाहिए, बुजुर्ग या वरिष्ठ के खिलाफ हमें कभी जाना नहीं चाहिए। तो इसलिए एक कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस शाप को स्वीकार किया, बतलाने के लिए कि हमें बुजुर्गों के प्रति कैसे बर्ताव करना चाहिए। और दूसरा कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ये सिद्ध करना चाहते थे कि पतिव्रता स्त्री की क्या शक्ति होती है, कि जब पतिव्रता स्त्री कोई शब्द बोलती है तो वो सत्य निकलना ही है और उसे कोई भी बदल नहीं सकता है, यहां तक कि भगवान भी नहीं बदलते हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए कि पतिव्रता होना कितना आवश्यक है और उसकी शक्ति कितनी है, भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के शाप को अपने सर पर स्वीकार किया। और वास्तव में ऐसे हुआ, यदुकुल में के जो नौजवान राजकुमार थे, एक बार द्वारका में उन्होंने जाकर नारद आदि ऋषियों का अपमान किया, उन्होंने सांब को आगे किया और सांब के पेट में, एक कपड़े के नीचे एक पेट के जगह लोहा भर दिया, या लोहा ने एक तकिया भर दी, तकिया भर के ऐसे एक गर्भवती स्त्री का एक नकल किया, सांबा को एक स्त्री के वेश पहनाकर और पेट की जगह कोई तकिया वगैरह रखकर वो ऋषियों के सामने लेकर आए और ऋषियों का मजाक उड़ाने लगे कि हे ऋषिगण, आप सब त्रिकालज्ञ हैं, आप भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, तो कृपया बताइए कि ये जो सुंदर युवती है, जो गर्भवती है, इसका लड़का होगा या लड़की होगी? तो ऋषि मुनियों ने तुरंत समझ लिया कि ये हमारा मजाक उड़ाने आए हैं यहां, और ये इतने घमंडी हो गए हैं राजकुमार कि ऋषि मुनियों को भी के साथ में कैसे बर्ताव करना चाहिए इनको नहीं मालूम, तो ठीक है, इनको अच्छा सबक सिखाया जाए। तो उन्होंने शाप दिया कि हे मूर्खों, ये जो युवती है ना लड़का को जन्म देगी ना लड़की को, बल्कि लोहे को टुकड़े को, और ये लोहे का टुकड़ा जो है आगे चलकर तुम्हारे वंश का नाश हो करेगा। और वास्तव में जब उन्होंने कपड़ा खोला सांब के पेट पर तो देखा कि लोहे का टुकड़ा है, तब घबरा गए सारे राजकुमार और तुरंत राजा उग्रसेन के पास जाके उन्होंने ये बात बताई। राजा उग्रसेन भी घबरा गए क्योंकि ऋषि मुनियों का शाप जो होता है वो तो सत्य निकलना ही है। तो राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि ये जो लोहे के टुकड़े को, पत्थर को चूर चूर कर दो और ये चूर जो है ये सारे समुद्र में जाके फेंक दो। तो ऐसे किया गया। और लेकिन ऐसा हुआ कि ये जो समुद्र के लहरों के साथ ये चूर हैं लोहे के, वो फिर तट पे आ गए और तट पे ये चूर बस गए और ये बीज के बराबर बन गए और ये बीज से लोहे के खंभे जैसे उग गए जमीन से। और एक बार जब यदुकुल के सारे राजकुमार प्रभास क्षेत्र में गए थे तो मदिरा पान के प्रभाव करके जब नशे की अवस्था में थे तो उनको ठीक समझा नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़े करने लगे, गर्मा गर्मी बढ़ती गई, तापमान बढ़ता गया और फिर उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। जब अस्त्र खत्म हो गए या नाश हो गए तो वहां पे जो पड़े हुए लोहे के खंभे थे उनको उठाया और उन खंभों से एक दूसरे के प्रति आक्रमण करने लगे और सत्यानाश कर सब खत्म हो गया। उस समय केवल कृष्ण वहां आए नहीं थे, लेकिन इस तरह से एक दूसरे को मारकर सारे यदुनाश का वंश का नाश हो गया। तो ये गांधारी का शाप था और वह होना था और भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया था इसको। और ये क्यों हुआ? क्योंकि भगवान ने देखा कि ये निज जन है, मेरे ही जन है ये, और मैं जिस काम के लिए आया था, मैंने अवतार लिया है, मेरा काम तो पूरा हो गया। अब जब मेरा काम पूरा हो गया तो इनका काम भी पूरा हो गया। ये सारे मेरे पार्षद हैं, वो भी मेरे धाम से या तो देवलोक से अलग अलग जगह से आए हैं मेरी लीला में साथ देने के लिए, तो इनको भी अभी वापस लौटना चाहिए अपने अपने धाम में। जो देवलोक से आए उनको देवलोक जाना है, जो गोलोक से आए उनको गोलोक जाना है। तो जाए तो जाए कैसे, कौन इनकी हत्या कर सकता है? ये इतने शक्तिशाली हैं कि कोई उनको मार नहीं सकता। अगर कोई मार सकेगा तो केवल एक दूसरे को ही मार सकेंगे, बस। तो एक ही रास्ता है। तो इसलिए भगवान ने अपने योजना को भी गांधारी के शाप से जोड़ दिया। देखिए भगवान कितना बुद्धिमान है, एक ही कार्य में कितने उद्देश्यों को वो पूरे कर देते हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि गांधारी की पतिव्रता होने के नाते श्री कृष्ण को भी उनका शाप स्वीकार करना पड़ा। तो गांधारी को इतना सब दुख झेलना पड़ा। और बाद में फिर जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो धृतराष्ट्र गांधारी के साथ में रहे महल में। और जब विदुर तीर्थयात्रा करके आए, क्योंकि विदुर और बलराम ये दो व्यक्ति थे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय दोनों तीर्थयात्रा में गए थे, दोनों ने कहा हम यहां रहेंगे नहीं। तो विदुर जब लौट कर आए, उन्होंने सुना उद्धव से कि क्या हुआ है, युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ सब सत्यानाश हो गया है। तो विदुर लौट कर आए और उन्होंने देखा कि अभी भी धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में रह रहे हैं और उनको दया आई हृदय में कि मेरे बड़े भाई, उम्र इतनी हो गई है लेकिन फिर भी अभी महल के सुविधा को, महल के आराम में रहकर खा पी रहे हैं। तो बड़े कटु वचन उन्होंने अपने बड़े भाई को बोले कि हे धृतराष्ट्र, आप तो ऐसे कुत्ते के समान हो जो कि किसी ने फेंके हुए भोजन के टुकड़े, रोटी के टुकड़े जो खा रहे हैं, आप ऐसे हो जिसको आपने मारने का प्रयास किया, जिससे आपने राज हड़प कर लिया, जिसके विरुद्ध आपने युद्ध किया और जिसके सामने आप हार गए, उसका नमक अभी आप खा रहे हो। ये कैसी दशा है आपकी, ऐसे अपमानित अवस्था में आप यहां रह रहे हैं और ये इस उम्र में जब आपको तपस्या करनी चाहिए वन में जाकर, तो निकल जाइए यहां से, चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले जाता हूं। तो धृतराष्ट्र को मनाया और धृतराष्ट्र को जंगल में ले गए। तो उस समय गांधारी भी थी, गांधारी ने कहा हम भी आएंगे, हम पति को छोड़कर कहां जाएंगे, कैसे जा सकते हैं। तो गांधारी भी धृतराष्ट्र के साथ में आई, विदुर उनको ले गए, विदुर ने उपदेश दिया और धृतराष्ट्र ने अपने आप को तपस्या में स्थित कर दिया, योग अभ्यास करना आरंभ किया और काफी समय तक करते रहे। उधर विदुर उनको जंगल में छोड़कर वापस आ गए। यहां पर जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो उनको संशय हुआ कि क्या वो जंगल में तो नहीं गए, कहां चले गए। बहुत शोक कर रहे थे। उस समय विदुर लौट के आए और उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया, कहा कि चिंता नहीं करो, क्योंकि धृतराष्ट्र अभी तपस्या कर रहे हैं और योग अभ्यास में, योगासन में स्थित हैं, और मेरा अनुमान है कि करीब करीब आज से 5 दिन बाद योग के शक्ति के द्वारा अपने शरीर के को वो भस्म कर देंगे योगाग्नि से, और उसके बाद में गांधारी अपने पति का शव चित पे रखकर अग्नि लगाएंगी और फिर खुद उस अग्नि में प्रवेश करेंगी और सती करेंगी। तो और ऐसे ही हुआ। थोड़े दिन बाद धृतराष्ट्र ने अपने प्राण को त्याग दिया, लेकिन अपने योग बल से अपने शरीर को ही बिल्कुल शरीर को आग लगा दिया और फिर अपना शरीर, उनका शरीर भस्म कर दिया। तो किसी को जाकर वहां स्मशान घाट में ले जाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए विदुर ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जंगल में उनको खोजने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अंतिम क्रिया वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद वही अपने योग बल से अपने शरीर को भस्म कर देने वाले हैं और गांधारी भी ऐसे ही करने वाली हैं, इसलिए जंगल में मत जाना। तो देखिए, गांधारी को भी कितना कष्ट सहन करना पड़ा, अपने पति को अपमानित होते देखना पड़ा, और जब पति चले गए तो पति की सेवा करते रहे जंगल में। यह है पत्नी का कर्तव्य कि पति चाहे जंगल में हो चाहे वो घर में हो, पति का साथ दे और पति की सेवा करे। और खास करके जब पति भक्ति कर रहा है तो पत्नी का कर्तव्य बनता है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पति को साथ दे। और पति पत्नी के लिए यह शास्त्रों का एक भेंट है कि केवल अगर पत्नी भी तपस्या न करे, केवल पति की तपस्या में साथ दे या पति को मदद करे तपस्या करने के लिए, तो वो तपस्या का फल जो है पत्नी को खुद ब खुद मिल जाता है। बताया जाता है कि कर्दम मुनि जब वन में तपस्या कर रहे थे तो देवहूति देवी केवल उनकी सहायता करती थी, जो उनको सामग्री पूजा इत्यादि के लिए चाहिए था वो लाके देती थी। जो तपस्या कर्दम मुनि ने की वो तपस्या देवहूति ने नहीं की, लेकिन उनके साथ में रही, इसलिए देवहूति को भी वो लाभ मिल गया, वो भी भगवान के धाम को जा पाई, क्योंकि वो भाग्यशाली थी कि उनको पति, उनके पति जो है वो एक भक्त थे और उन्होंने पति की सेवा की। तो इस प्रकार से गांधारी ने भी अपने पति की सेवा की जब वो तपस्या कर रहे थे। वो ध्यान में बैठे थे और जो भी उनको चाहिए था वो गांधारी आके करती। और प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि गांधारी कुछ बोलती भी नहीं थी ताकि पति को डिस्टर्ब ना हो, अपना काम ठीक ठाक से करती रहती थी। और अंत में जब वो अकेली थी जंगल में, कोई साथ में नहीं था और पति भी मर गए, तो कौन है, जैसे यह हम देख रहे हैं, वेदर भी राजा रानी देख रही हैं कि मलयध्वज उनके पति वो गुजर गए, अब वो अकेली है जंगल में। अब देखिए, जंगल में अकेले रहना कोई आसान बात नहीं है, पुरुष भी जाना डरता है, जाने के लिए डरता है, तो अगर अकेली स्त्री जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो वो डर गए, लेकिन गांधारी को यह दुख भी सहन करना पड़ा और फिर वो खुद अग्नि में प्रवेश कर गई। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी अवस्था में जो पत्नी पति के साथ में रहकर सेवा करती है, खास करके भक्ति में साथ देती है, उसके लिए तो भगवान का धाम खुल जाता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो पत्नी के लिए कोई तपस्या की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों का आदेश है कि केवल भक्ति में अगर अपने पति के साथ दे और खुद भी करे तो उसे इतने फल प्राप्त होंगे कि कल्पना के बाहर है। तो माताओं के लिए वास्तव में ये एक सौभाग्य है, ये भगवान ने बनाए हुए एक पद्धति है। अपने पति के साथ हमेशा मीठे वचन बोलना, कटु वचन नहीं बोलना, पति के साथ जो भी पति के सहकार्य करना और जो भी कार्य पति करते उसमें भागीदार होना, सहभागी होना, ये सब चीजें हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, क्योंकि भगवान ने बनाई है ये पद्धति। लेकिन हम इस पद्धति के खिलाफ जब जाते हैं तो फिर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है जीवन में। इसलिए भगवान ने जैसे बनाया है पद्धति, जैसे शास्त्रों में बताया है, अगर हम करेंगे तो वास्तव में सच्चे सुख और शांति की अनुभूति हम कर पाएंगे। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य यह भी बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, उसी प्रकार शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए। और अगर शिष्य गुरु के आदेश का पालन नहीं करता, गुरु के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना पूरी कोशिश नहीं करता, तो उसके प्राण की कोई कीमत नहीं है। और अगर गुरु प्राण त्यागते हैं तो ऐसे शिष्य को भी उसी समय प्राण त्यागना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन किसी काम का नहीं है अगर गुरु के आदेश का पालन वो नहीं करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।